विषय सूची: पहला पृष्ठभूमि, दूसरा द्विवेदी युग की आलोचना, तीसरा शुक्ल युग की आलोचना, चौथा शुक्लोत्तर आलोचना, पांचवा प्रगतिशील समीक्षा, छठा नई समीक्षा, सातवां नाट्य समीक्षा, आठवां कथा समीक्षा, नौवां सातवां दशक और उसके बाद, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। खंड एक: हिंदी आलोचना के इतिहास को प्रायः रीतिकाल तक और कभी कभी उससे अब भी पीछे खींचकर ले जाने का प्रयास अक्सर किया जाता है। इस तरह की हर कोशिश के पीछे यह विश्वास रहता है कि परंपरा का बल हमेशा गरिमा और महत्व प्रदान करता है। यह बात अलग है कि परंपरा के नाम पर बैठाए गए संबद्ध सूत्र अक्सर दुराग्रह होते हैं, पर फिर भी हम एक अतर्क मोह से उनके साथ चिपके रहना चाहते हैं। आलोचना के इतिहास की सही समझ सिर्फ रचनात्मक साहित्य के संदर्भ में ही हो सकती है। साहित्य के जरूरतों से काट कर किसी स्वायत्त विचारधारा या शास्त्र के रूप में आलोचना को प्रतिष्ठित करने का हर प्रयत्न उसकी सार्थकता और शंकास्पद बना देता है, क्योंकि जीवंत आलोचना साहित्य के हर मोड़ के साथ नए संदर्भ में ढलती है और अपनी सार्थकता को सिद्ध करती है। आधुनिक काल की हिंदी आलोचना को रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों के परिपाटी विरासत में मिली, परंतु सहसा उस परिपाटी को छोड़कर जो एक नए आलोचना मार्ग की आवश्यकता का अनुभव आधुनिक युग ने किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण साहित्य के पाठक समुदाय का बल बदल जाना था। आलोचना के इतिहास की बात करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आधुनिक युग के साहित्य में जो खास बात घटित हुई वह यह थी कि साहित्य व्यक्ति सत्ता या वर्ग सत्ता से हटकर समाज सत्ता की वस्तु हो गया। इस युग में पत्र पत्रिकाओं का निकलना एक बहुत बड़ी बात है। यह बात इसलिए और महत्वपूर्ण है कि ये पत्रिकाएं जिस पाठक समुदाय के लिए निकली वह राज दरबार का सहृदय रसिक नहीं बल्कि मध्य वर्ग का शिक्षित पाठक था। इसलिए सवाल दरबारों और गोष्ठियों में वाहवाही लूटने का नहीं रह गया, बल्कि जन सामान्य की रुचि का ध्यान रखते हुए उसके संदर्भ में अपनी सार्थकता सिद्ध करने का हो गया। यह साहित्य का जनतंत्रीकरण था। जाहिर है आलोचना का दायित्व भी इसी पाठक समुदाय की रुचि से संबद्ध हो गया। यही कारण है कि उस समय के पत्र पत्रिकाओं में अपने समय के मध्यवर्गीय जन समुदाय के रुचि को ध्यान में रखते हुए समसामयिक साहित्य को स्थान मिला। परिणामतः आलोचना भी मुख्यतः इसी साहित्य और उससे उत्पन्न होने वाले प्रश्नों से संबद्ध हो गई। यह नहीं कहा जा सकता कि पुराने विषयों को इन पत्रिकाओं ने ताक पर रख दिया। इन पत्रिकाओं में अक्सर प्राचीन लेखकों और साहित्य पर लेख प्रकाशित होते थे, परंतु उनका स्वर परिचयात्मक था और उद्देश्य अपनी परंपरा और पुनरान्वेषण। इसी दिशा में अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया गया, पांडुलिपियों की खोज हुई और शोध पत्रिकाओं का आरंभ बीते हुए या विस्मृत साहित्य के पुनरुद्धार और पुनर्विष्कार के दृष्टिकोण से किया गया। अतीत की ओर सम्मान और आशा के भाव से लौटना पुनर्जागरण की एक प्रमुख मुद्रा है, पर वह बात अलग है। हिंदी आलोचना ने इस समय जो दबाव महसूस किया उसका संबंध अपने युग की बदली मनोरुचि से था। कहा जाता है कि इस युग में गद्य शैली और उपन्यास नाटक आदि नई रचना विधाओं का विकास आलोचना के लिए साधक हुआ, परंतु ध्यान से देखा जाए तो यह बात का सरलीकरण है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आलोचना का काम इसलिए आसान या कुछ अलग किस्म का हो गया कि उसके अभिव्यक्ति के लिए गद्य शैली और विषय के लिए नई विधाएं मिली। इस बदलाव और का संबंध इससे कहीं अधिक गहरे उस नए ढंग की सामाजिकता से जुड़ा हुआ है जो इस साहित्य के माध्यम से सामने आई। भारतेंदु के भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी जैसे नाटकों अथवा समसामयिक प्रश्नों पर लिखी कविताओं के किसी भी तरह के मूल्यांकन के लिए प्राचीन लक्षण ग्रंथों की पूरी संपदा जैसे बेकार हो गई। कई यह बात जितनी सही है उतना ही यह भी है कि बदलाव जिस तेजी से रचनात्मक साहित्य में आया उसी बराबरी से आलोचना में नहीं। आलोचना में अब भी बहुत कुछ ऐसा था जिस पर परंपरा मोह की गहरी छाया थी, पर कुछ ऐसा भी था जिसमें उससे मुक्ति की छटपटाहट दिखाई पड़ने लगती थी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी को आलोचना का संक्रमण काल कहा जा सकता है। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में से 20वीं शताब्दी की आलोचना को विरासत में निम्नलिखित प्रवृत्तियां प्राप्त हुई। पहला, सैद्धांतिक ग्रंथ और निबंध जैसे भारतेंदु का नाटक 1883 ईस्वी, जगन्नाथ दास प्रसाद भानु का छंद प्रभाकर समय 1897 ईस्वी और नागरी प्रचारणी पत्रिका समय 1897 ईस्वी में प्रकाशित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का लेख समालोचना। दूसरा, विद्वत्तापूर्ण शोध निबंध जिनका प्रकाशन प्रमुख रूप से नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ करता था। इन लेखों में किसी साहित्यकार के जीवन वृत्ति रचना काल और रचनाओं के बारे में प्रामाणिक सूचनाएं देना ही लेखक का उद्देश्य रहता था। तीसरा, साहित्य इतिहास ग्रंथ जिनके नाम पर हिंदी में शिव सिंह सरोज समय 1878 से ईस्वी की रचना हुई। इस ग्रंथ में प्राचीन कवियों के अत्यंत संक्षिप्त और बहुधा हैं। इसका महत्व बहुधा अनुमानाश्रित जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं के उदाहरणों का संकलन किया गया है। इसका महत्व परवर्ती इतिहास ग्रंथों के लिए आधार सामग्री प्रस्तुत करने की दृष्टि से ही है। चौथा, पुस्तक समीक्षाएं जो मुख्य रूप से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आई। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की एक सच्ची समालोचना पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1886 ईस्वी में लिखी और इसी के आसपास बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में इसी नाटक की समीक्षा प्रकाशित की। इसके अतिरिक्त उन्होंने गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला के अनुवाद की समीक्षा भी प्रस्तुत की। इन आलोचनाओं की कृति मुख्यतः गुण दोष निरूपण की थी, पर इनमें प्राचीन और समसामयिक रचनाओं को समान रूप से विषय बनाया जाता था। इस युग की आलोचना का सच्चा स्वरूप गुण दोष निरूपणी पुस्तक समीक्षाओं में मिलता है। 20वीं शताब्दी में इन्हीं पुस्तक समीक्षाओं की परंपरा से हिंदी आलोचना का क्रम आगे बढ़ा। 1900 ईस्वी में सरस्वती का आरंभ इसी दृष्टि से एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। आगे चलकर 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार संभाला। अगले ही वर्ष उन्होंने पुस्तक समीक्षा नाम से सरस्वती में एक स्तंभ चालू कर दिया। इस पुस्तक पर उनकी दृष्टि में कितना महत्व था इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रकाशित होने वाली परिचयात्मक पुस्तक समीक्षाएं वे स्वयं लिखा करते थे। सरस्वती के अतिरिक्त कुछ पत्रिकाएं पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य से ही प्रकाशित की गईं। 1902 में जयपुर के से समालोचक नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। माधव मिश्र पहले ही 1900 में ईस्वी में बनारस से सुदर्शन निकाल चुके थे। आरंभ में इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षाओं का स्वरूप परिचयात्मक था, जो क्रमशः प्रचारात्मक हो चला और फिर धीरे धीरे गुटबंदी करके पुस्तकों की निंदा प्रशंसा की जाने लगी। इस प्रकार के परिचयात्मक निबंधों के अतिरिक्त इसी समय प्राचीन और समसामयिक साहित्य पर कुछ मूल्यांकन परक लेख भी सामने आए। ध्यान से देखा जाए तो हिंदी आलोचना की नींव सही अर्थों में इन्हीं लेखों से पड़ी। हिंदी कवियों और उनके साहित्य को विषय बनाकर यह शुरुआत मिश्र बंधुओं ने की। 1900 ईस्वी में ईस्वी की सरस्वती में हमीर हट और श्रीधर पाठक पर और 1904 में समालोचक में महाकवि भूषण पर उनके आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हुए। परिचय और गुण दोष निरूपण के आगे बढ़कर यद्यपि इन लेखों में विवेच्य साहित्य और साहित्यकार के मूल्यांकन का प्रयत्न किया गया, तथापि इनका आधार रीति ग्रंथों और प्रतिपादित शास्त्रीय सिद्धांत ही रहे। इनका विवेचन क्रम कुछ इस प्रकार रहा करता था। रसों का निरूपण, अलंकारों का विवेचन, गुणों की व्यंजना और दोषों के परिहार का निर्देश, और अंत में इसी आधार पर कृति की सफलता विफलता का निर्णय आलोचना के इस पद्धति में कहीं कहीं बदली रुचि का आभास मिलने लगा था। पर जैसा आचार्य शुक्ल ने कहा है, उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत कन्वेंशनल ही रहा। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ नंबर 638। इस पद्धति की आलोचना का चरम परिपाक 1910 से 1911 के ईस्वी के बीच हिंदी नवरत्न के प्रकाशन में हुआ। इस ग्रंथ के प्रकाशन से हिंदी में शास्त्रीय ढंग के की काव्यालोचना को तो बल मिला ही, साथ ही नवरत्नों में श्रेणी क्रम निर्धारण के कारण तुलनात्मक आलोचना का सिलसिला भी शुरू हो गया। देव और बिहारी के बीच श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए आरंभ होने वाले इस विवाद में द्विवेदी युग के सभी मान्य आलोचकों ने भाग लिया। पंडित पद्म सिंह शर्मा, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन सभी ने इस बहस में हिस्सा लेने के अलावा तुलनात्मक समीक्षा के प्रति भी रुचि दिखाई। पंडित पद्म सिंह शर्मा के तुलनात्मक शैली में विविध विषयों पर लेख लिखे गए। अनेक स्फुट निबंध समय समय पर सरस्वती की संख्याओं में क्रमशः प्रकाशित होते रहते थे। इस आलोचना की रूढ़िबद्धता का एक कारण यह भी रहा कि काव्य और नाटक की आलोचना की एक परिपाटी रीति शास्त्र में पहले से मौजूद था, परंतु इनसे भी भिन्न जो समीक्षात्मक लेख नए साहित्य रूपों को विषय बनाकर लिखे गए, उनमें एक अलग ढंग की आलोचना दृष्टि का परिचय मिला। ये लेख समसामयिक कथा साहित्य पर विवादों के रूप में सामने आए। इस प्रकार का एक विवाद बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को लेकर 1902-3 ईस्वी में सुदर्शन तथा श्री वेंकटेश्वर समाचार के बीच हुआ। इस बहस को समालोचक पत्र ने अत्यंत आत्मीय मजाकिया स्वर में समाप्त किया। यह घटना कुछ दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है। यह विवाद इस बात को प्रमाणित करता है कि जहाँ नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचनाओं के विषय मुख्य रूप से प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य ग्रंथ और कवि रहे, वहाँ अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पत्रों का ध्यान समसामयिक और लोकप्रिय साहित्य की ओर गया। प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जहां प्रतिष्ठित और समय सिद्ध साहित्य को ही मान्यता देती रही, वहां इन पत्रों ने समसामयिक और लोकप्रिय रचनाओं पर ध्यान दिया और इस प्रकार अधिक लोकोन्मुख और जीवंत होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। यह बहस कथा साहित्य से संबद्ध होने के कारण महत्वपूर्ण तो है ही, अपने विषय के कारण दिलचस्प भी है। बहस का मुद्दा है चंद्रकांता, संभव असंभव का प्रश्न है। लेकिन बहस इतने पर ही खत्म नहीं होती। अयारी, तिलस्मी और जासूसी कहानियों की अच्छाई बुराई को लेकर जो सवाल उठाया जाता है, वह परीक्षा गुरु के समान उपदेशपूर्ण आख्यायिका और साहित्यिकता तक पहुंचता है। इस संदर्भ में सुदर्शन की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में, यदि उपदेश ही ग्रहण करना है तो किसी आधुनिक लेखक की निर्जीव आख्यायिका का पाठ करने की जगह रामायण, गीता आदि धर्म पुस्तकों का ही अवलोकन करना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा बंद। आलोचना पृष्ठ 15, पृष्ठ नंबर 56 से उद्धृत। ऐसे प्रश्नों को लेकर जो बहस सुदर्शन और श्री वेंकटेश्वर समाचार ने चलाई, उसमें फिर क्रमशः भारत मित्र, समालोचक, हिंदू तथा छत्तीसगढ़ मित्र आदि सभी पत्र शामिल हो गए। चंद्रकांता के अलावा छत्तीसगढ़ मित्र 1902 में श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु और नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी की समीक्षा प्रकाशित हुई। समालोचक 1903 में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास तारा की विस्तृत समीक्षा में अश्लीलता के प्रश्न को प्रमुखता दी गई है। समालोचक के ही 1903 के अक्टूबर नवंबर अंक में देवकी नंदन खत्री के उपन्यास काजर की कोठरी की समीक्षा प्रकाशित हुई। इन पत्रों के अलावा समकालीन उपन्यासों पर इक्की दुक्के समीक्षाएं सरस्वती में भी प्रकाशित तो होती रहती थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी पर 1911 ईस्वी की सरस्वती में एक मनोरंजक समीक्षा प्रकाशित हुई। कथा साहित्य पर प्रकाशित इन समीक्षाओं में ध्यान देने वाली बात यह थी कि या तो इनमें पुस्तक के आकार प्रकार की चर्चा थी, या फिर नैतिक सामाजिक दृष्टि से उनकी विषय वस्तु को लेकर विचार व्यक्त किए जाते थे। कभी कभी लगे हाथों भाषा पर भी टीका टिप्पणी कर दी जाती थी, लेकिन वहाँ भी भाषा में गुण अलंकार आदि का विवेचन न कर उसकी नागरिकता, संस्कृतपन, उर्दू, पंजाबी आदि के प्रभाव पर विचार करना ही प्रमुख रह करता था। यह बात अलग है कि ऐसे शास्त्री निष्ठ समीक्षकों की उस समय कमी न थी, जो यह समझते थे कि जब तक हिंदी कहानियों मात्र की भाषा होगी, तब तक शास्त्रोपयोगी शब्दों की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए जब तक उपन्यासों का प्रचार नहीं हो जाएगा, तब तक यह शब्द दारिद्र्य नहीं मिटेगा। उपन्यासों के कारण अब तक हिंदी में कोई शास्त्र नहीं दिखाई देता। जिस भाषा में शास्त्र नहीं है, वह केवल गली कूचों की भाषा है। विष्णु चंद्र शर्मा के निबंध से आलोचना पृष्ठ 62 पर उद्धृत। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ में पुस्तक समीक्षाओं के माध्यम से आलोचना की दो स्पष्ट पद्धतियां उभर कर सामने आने लगी। काव्यालोचना के रू शास्त्र निबद्ध रूढ़ पद्धति और कथा समीक्षा की सूत्र शास्त्र मुक्त पद्धति। इनके अतिरिक्त आलोचना के नाम पर सैद्धांतिक निबंध और विद्वत्तापूर्ण शोध निबंध रचना की जो प्रवृत्ति भारतेंदु युग में दिखाई पड़ती थी, उसका भी सम्यक प्रसार 20वीं सदी में होता रहा। शास्त्रीय विषयों को लेकर इस युग में अनेक सैद्धांतिक ग्रंथों की रचना हुई। इन ग्रंथों में रस, ध्वनि, अलंकार, दोष, गुण, छंद आदि सभी विषयों का विवेचन विश्लेषण किया गया, किंतु प्रभुता अलंकारों की ही रही। इस प्रकार की उल्लेखनीय कृतियां हैं पंडित कन्हैयालाल पोद्दार की काव्यकल्प प्रदुम, कल पूर्व रूप 1902 ईस्वी और लाला भगवान दीन की अलंकार मंजूषा, इन ग्रंथों का लक्ष्य मुख्य रूप से हिंदी में साहित्य शास्त्र को सुलभ भर करना था। अतः इनमें मौलिकता का प्रयास नहीं है। संस्कृत के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का प्रभाव महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्फुट आलोचनात्मक निबंधों पर दिखाई पड़ने लगता है। अपनी परंपरा के प्रेमी होते हुए भी द्विवेदी जी ने अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण में उदारता का परिचय दिया। विद्वत्तापूर्ण शोध निबंधों की भी इस युग में बहुलता रही। इनमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के लेख सामने आए। पहला, संस्कृत कवियों विशेषकर कालिदास के जीवनी और साहित्य पर लिखे गए लेख। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरीलाल गोस्वामी एवं गुलेरी जी आदि ने कालिदास और उनके साहित्य पर अनेक निबंध लिखे। दूसरा, भक्ति परंपरा के कवियों तुलसीदास, सूरदास, नागरीदास आदि की जीवनी और साहित्य से संबद्ध शोधपूर्ण लेख लिखे। तीसरा, नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाश में आने वाले साहित्य को विषय बनाकर लिखे गए शोधपूर्ण लेख। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा प्रस्तुत बीसल देव रासों का विस्तृत विवरण इसी प्रकार का है। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के प्रश्न को लेकर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या तथा बाबू श्याम सुंदर दास के बीच का प्रसिद्ध विवाद भी इसी समय संपन्न हुआ। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास भी मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी के प्रकाशन से हुआ। इस ग्रंथ में पहली बार 3,757 लेखकों का इतिवृत्त तीन भागों में सामने आया। दूसरे संस्करण 1925 ईस्वी में लेखक संख्या बढ़कर 4,500 ईस्वी हो गई और इतिहास का विभाजन चार भागों में कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में उन सभी आलोचना पद्धतियों का प्रचार प्रसार हुआ जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से इस युग ने विरासत में पाई थी। खंड एक, पृष्ठभूमि समाप्त।